मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। 19 जून के इस afeias.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का एकेडमी फॉर एक्सीलेंस की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के ऑडियो गाइडेंस की। फ्रेंड्स, मैं शुरू से ये बात आपसे शेयर करता रहा हूं कि आप ये मन में बिठा लें कि जो सिविल सर्विस की परीक्षा है ये ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ माइंड की परीक्षा है। क्वालिटी ऑफ माइंड कहने का मतलब, इसके जरिए यूपीएससी ये ढूंढने की कोशिश करती है कि क्या ये स्टूडेंट प्रशासन के योग्य है, और प्रशासन का संबंध ज्ञान से उतना नहीं होता जितना व्यक्तित्व से होता है, जितना क्वालिटी ऑफ ब्रेन से होता है। मित्र, ओपनिंग रिमार्क्स के रूप में मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मेरे पास कुछ मेल्स आए हैं और मैं उन मेल्स के जरिए आपके सामने क्वालिटी ऑफ माइंड को केवल रखने जा रहा हूं ताकि आप खुद इसी के अकॉर्डिंगली अपने ब्रेन की क्वालिटी का कुछ तो मूल्यांकन कर सकें, कम से कम इवेलुएट कर सकें। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत मैं सिविल सर्विसेज में देख रहा हूं फ्रेंड्स, वो ये है कि लोग नॉलेज के पीछे हाथ मुंह धोकर के पड़े हुए हैं। किताबें बताइए, कितनी किताबें पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, कितने साल तक पढ़ें, केवल इसके पीछे लगे हुए हैं। अगर फ्रेंड्स यही सब कुछ है तो अभी कट ऑफ मार्क्स जो आए हैं 33% से कम के कट ऑफ मार्क्स में आप मेन्स में क्वालिफाई कर जाते हैं, और इतने में आप अपने कॉलेज में क्वालिफाई नहीं करते। मतलब कॉलेज में अगर इतने नंबर मिलेंगे तो फेल हो जाएंगे और सरकार ने आपको आईएएस के लायक समझ लिया है। तो ये क्या शो करता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक अपने आप को यूपीएससी के हिसाब से ढाल नहीं पाएंगे, और जब तक आप ढालेंगे नहीं, याद रखिए, तब तक सिविल सर्विस को क्वालिफाई करना मुझे लगता है एक टेढ़ी खीर जरूर होगी। मित्रों, मेरे पास एक मेल आया है प्रतिभा जी का, जो लगातार लिखती रही है मेल और काफी पुराने श्रोताओं में है, काफी एक्टिव श्रोता में है। उन्होंने एकेडमी फॉर एक्सीलेंस में जो अक्टूबर में जो क्लासेस होनी जा रही हैं उसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। मैंने कल ऑडियो गाइडेंस में उनका स्वागत किया था, अजय का भी स्वागत किया था जिन्होंने दिल्ली से एडमिशन लिया है। इसके जवाब में उन्होंने एक वाक्य लिखा है, इन्होंने लिखा है कि सर, आपका विकल्प सिर्फ आप ही हो सकते हैं। प्लीज इसको आप इस रूप में मत लीजिए कि मैं अपनी तारीफ करना चाह रहा हूं। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मेल आते हैं, तारीफ में लिखे हुए, कसीदे में, प्रशंसा में, कविताएं आती हैं, मैं आप लोगों से शेयर नहीं करता क्योंकि वो उसकी भावना है जिसने लिखा है और मैं उसको हृदय से स्वीकार करता हूं। तो इसे मैं अपनी बात बताने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा के जरिए ही आप लोगों की बात करने जा रहा हूं। अब ये क्या है, ये देखिए कि ये जो विश्वास है, ये विश्वास ही व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकाल करके बाहर ले जाता है। यही विश्वास है जो आपको अपनी लिमिटेशंस को तोड़ने के लिए बाध्य करता है। उस विश्वास चाहे किसी के प्रति भी क्यों न हो सकता है कि प्रतिभा जी अभी तक नहीं सोच पा रही हो। मैं जानता हूं कि एक लड़की होने के नाते किसी के सामने भी कितनी सारी दिक्कतें हो सकती हैं अपनी जगह को छोड़कर बाहर जाने में, लेकिन जब आपका विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता बहुत बढ़ जाती है, तो आप क्या करेंगे, आप विश्वास और प्रतिबद्धता को मिला दीजिए, फेथ और कमिटमेंट को मिला दीजिए, चमत्कार हो जाएगा। और याद रखिए फ्रेंड्स, ये मैं केवल अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं जीवन में हर एक क्षेत्र के लिए कह रहा हूं। आप एक किताब लेकर पढ़ते हैं तो प्लीज वो जो आप किताब पढ़ रहे हैं उसके प्रति भी आपके मन में इसी तरह का विश्वास होना चाहिए, इस किताब का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो उसके प्रति भी आपका ये आपकी सोच होनी चाहिए कि इसका कोई विकल्प नहीं है, भले ही उसके विकल्प बहुत उपलब्ध हैं। अगर आप दूसरे विकल्प को अच्छा समझते हैं तो डेफिनेटली इस पहले विकल्प को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे ये भी करना है और वो भी करना है, तब आप ये सोचिए कि नहीं ये विकल्प बहुत अच्छा है, इसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक इसी तरह से इसका कोई विकल्प नहीं है। मेरे सामने एक बार लाइफ मैनेजमेंट में काउंसलिंग करने के दौरान एक प्रश्न आया था कि ये बताइए कि मां और पत्नी में कौन महत्वपूर्ण है। मैंने बड़ा ब्लंटली जवाब दिया था, वही जो मैंने अभी दिया है। मैंने कहा यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि दोनों में कौन महत्वपूर्ण है। पत्नी पत्नी है, मां मां है। पत्नी मुझे जन्म नहीं दे सकती और मां मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो जब तो दोनों में विकल्प की जब बात ही नहीं है तो तुलना की बात कहां आती है। फ्रेंड्स, ये चीज, ये बात, ये तथ्य आपके दिमाग को बहुत मजबूत बनाएगी। और जब किसी के प्रति आपका विश्वास बहुत गहरा हो जाता है तो याद रखिए उसका बड़ा जबरदस्त साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। आपने एक पिग्मेलियन इफेक्ट शायद नाम सुना हो। याद रखिए, ये जो इस तरह की जो मैं बातें कह रहा हूं, ये अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, आपके ऐसे राइटिंग में बहुत काम आएंगे। पिग्मेलियन इफेक्ट ये है कि एक व्यक्ति ने मूर्ति बनाई, बहुत खूबसूरत मूर्ति बनी, बहुत सुंदर मूर्ति बनी, और मूर्ति बनाने के बाद वो उसी पर मोहित हो गया। उसे लगा कि ये तो मूर्ति जीवित है। वो बहुत ही ज्यादा भावना के साथ उसको देखता था, उसमें उसने अपनी भावना का संचार कर दिया और पता लगा कि वो मूर्ति जीवित हो गई, वो मूर्ति बोलने लगी। ये इसको कहा जाता है पिग्मेलियन इफेक्ट। बता, उसने अपनी भावनाओं का उसमें इतना जबरदस्त संचार कर दिया। फ्रेंड्स, स्पेन के एक बहुत बड़े चित्रकार हुए हैं पाब्लो पिकासो, जिनका मैं मुरीद हूं। एक बार की घटना है कि पाब्लो पिकासो के पास कोई व्यक्ति गया और उसने कहा, राजदरबार का व्यक्ति था, कि आप हमारे राजकुमारी का एक चित्र बना दीजिए। पाब्लो पिकासो ने कहा कि ठीक है। उन्होंने राजकुमारी का एक चित्र बना दिया और जब वो फिर से वो चित्र को लेने आया तो वो जिसने कहा था चित्र बनाने के लिए, वो उस चित्र को देख करके कहता है कि पिकासो जी, हमारी राजकुमारी तो ऐसी दिखती ही नहीं, ये किसका चित्र आपने बना दिया। तो पिकासो ने कहा था कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद वो दिखने लगेगी। फ्रेंड्स, ये होता है अपने क्रिएशन पर कॉन्फिडेंस, ये होता है विश्वास। और जब ये विश्वास आता है तो व्यक्ति के अंदर परिवर्तन नहीं होता है, क्रांति घटित होती है। अब मैं आपको दो और मेल बता रहा हूं। फ्रेंड्स, एक मेल है मेरे पास, उन्होंने कहा है कि मुझे सी सेट और जनरल स्टडीज का के पेपर्स चाहिए। अब ये बताइए कि ये जो आईएएस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, जो मुझसे मांग रहा है सी सेट और जनरल स्टडीज के पेपर, अब इस दिमाग की आप थोड़ा सा मूल्यांकन कीजिए। मैं जानबूझ करके अब नाम नहीं ले रहा हूं, दिमाग का मूल्यांकन कीजिए। मतलब उसने अपने लेवल पर कुछ सोचा ही नहीं कि कहां मुझे मिल सकता है, कहां मैं कोशिश करूं या और किसी से पूछूं। क्योंकि जब आप किसी से कुछ काम कराते हैं तो कम से कम ये तो देखते हैं कि काम इससे कराया जाना चाहिए या नहीं कराया जाना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात है कि आपने पहले उसके लिए क्या किया है, आपने क्या कुछ किया है, और सीधे सीधे आप डिमांड करने लगते हैं। तो मैं डिमांड के ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं केवल क्वालिटी ऑफ माइंड पर जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों की सूरत दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरह से ये जो घटनाएं हैं, छोटी छोटी घटनाएं हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट करती हैं और पूरे परीक्षा के दौरान वो चीजें दिखाई देती रहती हैं। एक मेरे पास और मेल आया है जिनकी समस्या ये है कि वो रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसे आप क्या समझते हैं? और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसी स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके मैं जब बात करूंगा तो वो कई चीजों में बताएगा कि उसमें वो रूटीन फॉलो करता है। अगर वो रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहा है आईएएस की तैयारी में, तो सीधी सी बात है कि आईएएस की तैयारी उसकी प्राथमिकता की सूची में टॉप पर नहीं है। क्योंकि जो आपकी प्राथमिकता की सूची में टॉप पर होगा, जो प्रायोरिटीज पर होगी, उसको आप पूरा करेंगे ही करेंगे, भले ही उसके चलते आपको दूसरों को छोड़ना क्यों ना पड़े। अब फैसला आपको करना है कि आप आईएएस की तैयारी को छोड़ना चाह रहे हैं या बाकी चीजों को छोड़ना चाह रहे हैं। इसका क्या उपाय हो सकता है, आप बताइए। मैं क्या उपाय बताऊं कि आप इस तरह से रूटीन को फॉलो करें, सिवाय इसके कि आप अपने दिमाग की क्वालिटी पर काम कीजिए, अपने दिमाग को मजबूत बनाइए। क्योंकि आपने जो बनने का सोचा है, जो करने का सोचा है, वो भ्रम पैदा करने वाला है, वो कमजोर है, वो बेकार का है, वो क्षणिक है, वो बहुत अस्थायी है। छोड़ दीजिए इस काम को। और यदि फैसला किया है तो कम से कम अपना 100% बेस्ट देने की तो कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये मेरे जीवन का मूल मंत्र रहा है कि भले ही सामने वाले को मेरा 100% दिखाई न दे, हो सकता है मेरे अंदर बहुत सी कमियां हो सकती हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन जब भी मैं देता हूं तो मैं अपना 100% देता हूं। अगर मैं आप लोगों को ऑडियो गाइडेंस के जरिए कुछ भी बता रहा हूं तो ये मेरा अपना 100% है। हो सकता है कि सोसाइटी की दृष्टि से यह 5% हो, इवन 0% हो, आई डोंट माइंड इवन, लेकिन मेरी कोशिश पूरी होती है। इसीलिए प्रतिभा जी, चाहे आप हों या और स्टूडेंट हों जिन्होंने एकेडमी फॉर एक्सीलेंस में रजिस्ट्रेशन कराया है और जो 15 दिन एक बड़ा विश्वास लेकर के मेरे पास आ रहे हैं, वो विश्वास रखें कि उन्हें मेरा 100% मिलेगा, और ये भी विश्वास रखें कि ये जो 100% होगा उनका भी कहीं न कहीं 100% हो, इसके लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। फ्रेंड्स, आज के ओपनिंग रिमार्क्स में इतना ही कि प्लीज आप अपने दिमाग, अपने व्यक्तित्व, अपनी सोच, इन सब का भी अवलोकन करके, इन सब को भी ऑब्जर्व करके उस पर भी काम करने का सोचें। कोई बना बनाया रास्ता, आसान रास्ता न चुने, क्योंकि ये बना बनाया और आसान रास्ता एटलीस्ट सिविल सर्वेंट बनने का रास्ता तो नहीं है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के AIR न्यूज पर। आज के AIR न्यूज में कुछ भी खास नहीं है। इराक की घटना आप देख रहे हैं, जो थोड़े से भी पहले से मुझे सुन रहे हैं, किस तरह से एक छोटी सी घटना लगातार बड़ी होती चली गई है, और आज के तो 15 मिनट के न्यूज में 5-6 मिनट सिर्फ इराक की घटना पर हैं, और ये इसलिए है क्योंकि हमारे भारतीय वहां कुछ फंसे हुए हैं, उनको लेकर के भारत सरकार चिंतित है, कोशिश की जा रही है कि किस तरह से उनको वहां से निकाला जाए। फ्रेंड्स, सिविल सर्वेंट के जब आप बनेंगे तो हो सकता है कि आपको इंडियन फॉरेन सर्विस मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है, जो 3-4 बहुत टॉप मोस्ट प्रेफरेंस वाली सर्विस में IFS आती है। वहां जो हमारा दूतावास है इराक में, जो हमारा दूतावास है बगदाद में, उसका काम ही यही होता है। जब भी आप IFS बनेंगे तो ज्यादातर समय, मैं समझता हूं कि अगर मैं ये मान करके चलूं कि आपकी टोटल लेंथ ऑफ सर्विस 30 ईयर्स है, तो आप मान करके चलिए तो एटलीस्ट 22-23 साल तो इसमें से आपके केवल विदेशों में कटेंगे। हाँ, 7-8 साल आप भारत में भी रहेंगे, क्योंकि भारत में भी विदेश मंत्रालय है, उसमें भी IFS के ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है। तो आपने देखा कि अभी जो सुरेश रेड्डी जी की जो बात हुई कि उनको वहां फिर से भेजा जा रहा है, उन्होंने 2 साल पहले बगदाद में काम किया हुआ था, तो वो IFS के होंगे डेफिनेटली, और चूंकि वो अनुभव है तो वहां की चीजों को समझते हैं, तो उनको भेजा जा रहा है ताकि वहां की स्थिति को और मजबूत वो अपने दूतावास की स्थिति को कर सके। फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में काफी बात करता रहा हूं, आर्टिकल्स भी डालता रहा हूं, आज भी इस पर आर्टिकल्स और एडिटोरियल डलेंगे। न्यूज में एक ये भी बात कही गई है कि इसका असर, मतलब ऐसा मत समझिए कि इसका असर केवल इराक पर पड़ेगा या पड़ोसी राष्ट्र ईरान पर या उसके बिल्कुल पड़ोसी राष्ट्र सीरिया है, इधर जॉर्डन है, केवल इन पर पड़ेगा, बल्कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। क्योंकि यदि इराक पर इन आतंकवादियों का ISIS गुट का कब्जा हो गया तो डेफिनेटली इनके लिए एक इतना बड़ा केंद्र बन जाएगा इराक, इनको एक ऐसा सेंटर मिल जाएगा कि यहां से ये अपनी आतंकवादी गतिविधियों का फैलाव आसपास के एरिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कर सकते हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। भारत के संदर्भ में मैं आपको बता चुका हूं कि हम 2.5 करोड़ टन तेल यहां से मंगाते हैं, जो हमारे टोटल रिक्वायरमेंट का 10% है। तो भारत इस बात को लेकर के भी चिंतित है, और डेफिनेटली जो दूसरी उसकी सबसे बड़ी चिंता है वो आतंकवादी गतिविधियों को लेकर तो है ही। मित्र, दूसरी खबर थी मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। ये बात करीब 2 महीने पहले भी आई थी, तो मुझे लगता है कि चूंकि फिर से ये बात उठी है तो आपको ध्यान रखना है कि मुल्ला पेरियार बांध क्या है, इसकी सुरक्षा का प्रश्न किस तरह से निहित है, तो इस पर आप जरूर थोड़ी सी तैयारी कर लें। फ्रेंड्स, एक बहुत छोटी सी घटना है, शेयर मार्केट डाउन रहा है, रूपया कमजोर हुआ है, उसमें कारण भी दे दिया गया है, क्योंकि इराक में जो संकट आ रहा है उसके कारण विश्व में क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल, उसकी कीमत बढ़ने की आशंका हो गई है। और स्वाभाविक है कि चूंकि क्रूड ऑयल एक तरह से एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, और आज के इस औद्योगिक संस्कृति में आप जानते हैं कि बिना एनर्जी के कोई भी चीज काम नहीं कर सकती, ऐसी स्थिति में अगर तेल की कीमत बढ़ती है, यानी कि एनर्जी की कीमत बढ़ती है, और एनर्जी की कीमत बढ़ती है, इसका मतलब है कि सभी चीजों का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा वो उत्पादन की कीमत बढ़ेगी, उनकी लागत कीमत बढ़ेगी, और जब लागत की कीमत बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से उसका असर विक्रय मूल्य पर पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिक्स का एक सर्किल है, एक साइकिल है, जो इस तरह से काम करता है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के अखबारों पर। आज के अखबारों में काफी कुछ है आपके पढ़ने के लिए। और फ्रेंड्स, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मेरे पास आज एक और मेल है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पूछा है मुझसे कि केवल हिंदी के अखबार पढ़ने से ही बात बन जाएगी क्या, क्योंकि अंग्रेजी के अखबार को पढ़ने में काफी समय लगता है। तो मैं एक दो चीज यहां शेयर कर लूं। नंबर एक कि देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि हिंदी या अंग्रेजी के अखबार। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती, किसी तरह से मुश्किल से वो क्वालिफाइंग पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हिंदी के अखबार, अंग्रेजी के अखबार या कन्नड़ के अखबार का मतलब नहीं है। मतलब केवल यह कि अखबार पढ़ने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि उसमें से क्या पढ़ना है, और आपको केवल कंटेंट जुटाने हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम से जुटा लें, हिंदी से जुटा लें, इंग्लिश से जुटा लें, लैंग्वेज अदर लैंग्वेजेस से जुटा लें। लेकिन जब ये अगर आप कहेंगे कि पढ़ने में ज्यादा समय लगता है, तो प्लीज फिर मैं कहूंगा कि समय लगाइए। क्योंकि फ्रेंड्स, अब जो सिविल सर्विस की जो परीक्षा है उसकी 75% तैयारी, याद रखिए कि सिर्फ अखबारों से होगी। मैं ऑप्शनल पेपर को छोड़ रहा हूं, ऑप्शनल पेपर को अलग कर लीजिए आप, वो तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से तैयारी होगी। जो आपकी जनरल स्टडीज, जो इंटरव्यू, जो एसे राइटिंग, इसकी जो पूरी तैयारी 75% केवल अखबारों से होगी। इसीलिए जो आप अखबारों के लिए समय लगाते हैं उसको आप इस रूप में मत देखिए कि आपके 3 घंटे खत्म हो जा रहे हैं, 4 घंटे खत्म हो जा रहे हैं। इतना समय तो मुझे आपके आईडियो गाइडेंस को तैयार करने में लग जाता है। और यहां आपको बना बनाया इस तरह का एक जिस्ट, एक गन्ने का मैं आपको ग्लास सर्व करता हूं गन्ने का रस निकाल करके, और मुझे तो गन्ना बोना भी पड़ता है, उसको सींचना भी पड़ता है, फिर काटना भी पड़ता है, फिर पेरना भी पड़ता है, और तब मैं आपके लिए गिलास तैयार करता हूं। तो अगर मैं इतना समय लगा सकता हूं अखबार की तैयारी करने के लिए, अखबारों से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो आपको क्या दिक्कत है? तो अखबारों में लगाए जाने वाले समय को आप बहुत ही क्वालिटी टाइम मानिए, बहुत वैल्यूएबल टाइम मानिए, राइट? तो फ्रेंड्स, आज जो आपको नॉलेज सेंटर में पढ़ने को मिलेगा वो है, एक बहुत अच्छा कमेंट है अंजन राय का दैनिक भास्कर में, आम का निर्यात और रेलवे कोच का आयात। फ्रेंड्स, ये जो इंटरनेशनल जो मार्केट है उसको लेकर के बड़े व्यावहारिक स्तर पर यह आर्टिकल लिखा गया। प्लीज इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अंडरलाइन किया हुआ है। और याद रखें कि चीजों के बारे में आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। किताबी ज्ञान अब आपको आईएएस नहीं बना सकता, पहले कुछ सीमा तक वो संभव था। इसी तरह का एक आर्टिकल आज आपको इकोनॉमिक टाइम्स का मिलेगा, जो खासकर सब्जियों के जो रेट बढ़ते हैं उनका बड़ा प्रैक्टिकल एनालिसिस उसमें है कि सब्जी किसान कितने में उगाता है, फिर वो मंडी में उसको कितने में बेचता है, फिर बिचौलिया उसी को मार्केट में ले जाकर के 500% के प्रॉफिट में बेचता है। तो वो बड़ा एक प्रैक्टिकल आर्टिकल है। तो जहां भी आपको चीजों की प्रैक्टिकलिटी के बारे में पढ़ने को मिले, आप समझ लीजिए कि आपके हाथ में सोने की खदान लग गई है, और उसको पकड़ लीजिए। और दिमाग में उस समय यह मत लाइए कि यार ये सिविल सर्विस में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। मान के चलिए कि अगर इस तरह की कोई प्रैक्टिकलिटी आपके न्यूज़पेपर में, जो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर हैं, उनके एडिटोरियल आर्टिकल के रूप में आ गई है या एडिटोरियल कमेंट के रूप में आ गई है, मतलब कि वो देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मूल्यांकन का सिर्फ एक आधार होता है। दोस्तों, इसी तरह से प्रीतिश नंदी जी का एक लेख है दैनिक भास्कर में ही है। वो खासकर अभी जो बजट आ रहा है और बजट में जो टैक्स रिफॉर्म की जो बात कही जा रही है उनको लेकर के इन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा है। और मैं वैसे भी प्रीतिश नंदी जी का बड़ा प्रशंसक रहा हूं उनके लेख का। इसमें इन्होंने एक दो बहुत अच्छे आंकड़े दिए कि भारत में केवल 2.8% पॉपुलेशन ही, जो आबादी में लगभग 3.6 करोड़ है, टैक्सेस देती है। क्यों ऐसा होता है कि लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स से क्यों बचना चाहते हैं, और सरकार कैसे उसमें परिवर्तन कर सकती है, इसको लेकर के एक बहुत अच्छा लेख है। फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह से आज के दैनिक जागरण में तीन हैं। एक तो लेख ही है, खुशहाली की सही राह, यह संदीप पांडे जी का है। एक तरह से एक ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर है, मैं समझता हूं कि ये सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही निबंध के लिए एक अच्छा आर्टिकल है। खुशहाली क्या होती है, राष्ट्र की खुशहाली, और सच पूछे तो हम जो हैप्पी इंडेक्स कहते हैं, खुशहाली का सूचकांक कहते हैं, जिसको भूटान ने शुरुआत की है, उसके लिए भी एक अच्छा आर्टिकल है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके बाद दैनिक जागरण के ही दो लेख हैं, कि विवेक काटजू जी का है, वो इराक को लेकर के है। तो इराक की पूरी, मतलब खासकर 1979 के बाद इराक ज्यादातर हाईलाइट हुआ है, तो वहां से लेकर अब तक की स्थिति पर एक बहुत अच्छा विश्लेषणात्मक ये लेख है, तो आप इसे जरूर पढ़ें। तो आपको इराक की पूरी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि पता लग जाएगी और जिस तरह से इराक का संकट बढ़ता चला जा रहा है और भारत का जिस तरह से उससे लिंक है उसको देखते हुए अब इराक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता जा रहा है। ठीक इसी तरह से एडिटोरियल कमेंट भी दैनिक जागरण में है, वो आपको नॉलेज सेंटर में मिलेगा। फ्रेंड्स, एक बिजनेस स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा लेख है, कि जो हमारे कानून, जो हमारे बहुत से कानून हैं जो पुराने पड़ गए हैं उनमें से कैसे बदलाव की जरूरत है, इसको लेकर के पहले भी काफी पहले एक डेढ़ महीने पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी। लेकिन अब चूंकि मोदी जी ने सीधे सीधे सेक्रेटरी से कह दिया कि आप अपने अपने मंत्रालय के 10 ऐसे कानून की लिस्ट बनाइए जो बदले जाने चाहिए, तो डेफिनेटली फिर इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। इस पर सिविल सर्विस के मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस पर भी एक आर्टिकल होगा, इसको जरूर पढ़ें। फ्रेंड्स, दो एडिटोरियल कमेंट्स हैं इकोनॉमिक टाइम्स के। एक है इन्फ्लेशन को लेकर के, हम लगातार बात कर रहे हैं कि उसका मुकाबला कैसे हो सकता है। कल भी मैंने बात की थी कि अभी सरकार ने 2-3 तरी उपाय सोचे हैं। नंबर एक, प्याज के निर्यात का मूल्य निर्धारित कर दिया है। दूसरे, किस तरह से जो जमाखोर हैं उन पर नियंत्रण किया जाए। तो इस तरह से करके कुछ बहुत अच्छे आइडियाज दिए हुए हैं, परमानेंट आइडियाज कि कैसे इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा जो एडिटोरियल कमेंट है, कल आपको ध्यान होगा कि मैंने आपसे राज्यपालों के बारे में कहा था कि यह बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। अब आप देखिए कि आप एक मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। राज्यपालों की खबर को लेकर के आपको आकाशवाणी समाचार से कोई भी कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है, राइट? लेकिन वो न्यूज चैनल्स पर देखिए या अखबारों में देखिए, बहुत प्रोमिनेंट न्यूज है। प्लीज इसका मूल्यांकन आप अलग तरीके से करेंगे। देखिए, जो न्यूज चैनल्स है, जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स है और जो अखबार है, वो अगर सुनी सुनाई बात या कहीं उनकी संभावना भी होती है तो उनके लिए न्यूज बन जाती है और एनालिसिस शुरू हो जाती है। लेकिन जो गवर्नमेंट मीडियम है, जैसे आकाशवाणी का चैनल है और ठीक इसी तरह से जो दूरदर्शन का न्यूज चैनल है, वो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट जब कोई बात को बिल्कुल श्योर कर देगी तब वो उनको देगी। तो अभी इस बात का तो कोई प्रमाण है ही नहीं कि सरकार ने उनको रिजाइन करने के लिए कहा है या वो कहा है या फलाना, कुछ भी नहीं है। चीजें केवल र्यूमर में चल रही हैं, लेकिन एक इश्यू बन गया है, ये इश्यू बन गया है। तो इश्यू बनने के कारण उसको प्राइवेट मीडिया तो उठा लेगा लेकिन गवर्नमेंट मीडिया नहीं उठाएगा। लेकिन अगर वो इश्यू बन गया है तो सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेरी समझ से आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं फ्रेंड्स कि मेरा ये जो ऑडियो गाइडेंस है आपकी तैयारी तो करा ही रहा है, लेकिन इससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर क्षमता पैदा करना। मैं आपके थाली में मछली परोसने में विश्वास नहीं रखता, मैं आपको मछली पकड़ने के लायक बना देने में विश्वास रखता हूं, ताकि आप फिर रोज ताजी मछली पकड़ें और ताजी मछली खाएं। इसीलिए जो क्लासेस होंगी मेरी 15 दिन की, वो आपको इसमें परफेक्ट बना देंगे, वो मेरा एक उद्देश्य है। तो गवर्नर का जो मामला है, याद रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, बावजूद इसके कि वो ऑफिशियल चैनल में नहीं आ रहा है। तो ये क्लिप है जो मैंने कहा था कि आपको इकोनॉमिक टाइम्स में एक बहुत अच्छा लेख है, फूड प्राइसेस अप एंड डाउन, इसको लेकर के बहुत ही प्रैक्टिकल तौर पर यह आर्टिकल लिखा गया है, मैंने अंडरलाइन किया है। प्लीज इसको बहुत सावधानी से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपके टाइम्स ऑफ इंडिया के में एक न्यूज आइटम दिया हुआ अल नैनो को लेकर के, जो बाजार में महंगाई की बात हो रही है, वेजिटेबल्स की बात हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें इन्होंने 10 पॉइंट दिए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने, तो ये इस पर होगा, इसको आप जरूर पढ़िएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया नो डाउट मुझे बहुत अच्छा अखबार लगता है। इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडिटोरियल कमेंट भी है, और खासकर वही एपीएमसी एक्ट को लेकर के, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग एक्ट को लेकर के, और फिर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है इन्फ्लेशन को, उस पर एक एडिटोरियल कमेंट है। और दोस्तों, यहां इसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल है हिमालयन डिप्लोमेसी पर, यह दिलीप पड़गांवकर जी का है, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं और बहुत ही अच्छे थिंकर भी माने जाते हैं। तो इसमें खासकर जो हिमालयन डिप्लोमेसी, अब आप देखिए कि हिमालय के रेंज में कौन कौन से देश आते हैं। डेफिनेटली हम सारे के सारे हमारे पड़ोसी देश ही होंगे, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चाइना हो, डेफिनेटली ये राष्ट्र उसके अंतर्गत आते हैं। तो लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है, इन्होंने नेपाल को लेकर के लिखा है, खासकर थोड़ा सा जिक्र चाइना और दूसरों देशों का है, लेकिन मेनली ये नेपाल को लेकर के लिखा हुआ। तो ये भी आर्टिकल आपको नॉलेज सेंटर पर मिलेगा, तो प्लीज इसको भी आप देख लें। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं प्रीलिम्स के की तैयारी पर, और जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था और बताया, कहा था कि आप इसकी समस्याओं से जूझें, इसकी क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आप अपने अंदर महसूस करते हैं उसको आप रिव्यू करें। आप लोगों ने कर लिया होगा, 2 दिन से मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। अब आप देखिए कि मैं आज लास्ट इसे खत्म करना चाहूंगा। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो लिसनर हैं जो नए रूप में जुड़े हैं। प्रश्न ये था प्रीलिम्स में 2013 के जनरल स्टडीज के पेपर में पूछा गया था कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। नंबर वन, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दो, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीन, राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ये क्वेश्चन था। इसके बाद ऑप्शंस दिए हुए थे। इसमें मैंने आप दूसरे दिन फिर आपको बताया था कि इसमें कौन सी शब्दावली ऐसी है जो आपको एक तरह से भ्रमित कर सकती है, कैसे शब्दों का जाल बुन करके आपको उलझाने की कोशिश की गई है, और उसमें मैंने एक शब्द बताया था संस्थागत और दूसरा राज्य का अध्यक्ष, इसकी मैंने क्लियर किया था। अब आप देखिए कि एक उत्तर, सही उत्तर तक पहुंचने का एक तरीका होता है कि हम सीधे विकल्पों पर चले जाएं या विकल्पों के कूट पर चले जाएं। अब इसमें देखिए कि क्या कूट है। पहला कूट दिया है एक और दो, राइट। एक और दो का मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। आपको मैं बता भी चुका हूं कि जैसे अभी जावड़ेकर जी को मिनिस्टर बना दिया गया, पर्यावरण मंत्री और हमारे सूचना प्रसारण मंत्री, लेकिन वो संसद के सदस्य नहीं थे। फिर आपने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश से उन्हें राज्यसभा के सदस्य के लिए रखा गया और वो चुनकर आ गए। याद रखिए कि संसद के सदस्य का मतलब लोकसभा के सदस्य से नहीं होता है, वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं और लोकसभा से भी हो सकते हैं। और याद रखिए कि यहां तक कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी यही बात लागू होती है। मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के ही सदस्य रहे हैं, राइट। तो अगर उस घटना को आप वाच कर रहे हैं, बहुत देख रहे हैं, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन उस तरह से नहीं भी मालूम, तो ये देखिए चीज क्लियर हो गई, जो मैं आपको बार बार तैयारी करने के तरीके के बारे में जोर दे करके बता रहा हूं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है कि संसद में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। मोदी जी इसलिए प्रधानमंत्री बने क्योंकि उनके पास और उनके जो सहयोगी पार्टी थे उनके पास 300 से अधिक सदस्य हैं, और लोकसभा की कुल जो सदस्य संख्या है वो 543 है, तो आधे से अधिक है। तो ये विश्वास है, और बट नेचुरल है कि जब ये विश्वास खत्म हो जाएगा, माइनॉरिटी में गवर्नमेंट आ जाएगी तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो याद रखें कि यहां गवर्नमेंट के गिरने की बात नहीं कही है, तरीके से क्या कहा है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। और याद रखें मंत्री ही सरकार है, पार्टी सरकार नहीं है, मंत्री सरकार है, जो कैबिनेट जिसको हम मंत्री परिषद कहते हैं, और डिसीजन लेने वाली जो बॉडी होती है वो मंत्रिमंडल होता है, वो कैबिनेट होती है। तो देख रहे हैं आप कि कैसे शब्दों को घुमाया गया है, ये भी सही है। अब तीसरा दिया हुआ है राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो इसमें पूछा केवल एक और दो, तो ठीक है ये एक और दो तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये तो है, लेकिन आपको तीसरा भी तो देखना पड़ेगा कि कहीं पता लगा ये भी हो। इसमें दिया राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूं कि हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, भारत में हेड ऑफ द स्टेट हमारे राष्ट्रपति हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये क्यों ऐसा है, क्या क्या है इसके पीछे, क्या लॉजिक है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, इस बात पर मैं अभी नहीं जा सकता, वो बहुत डिटेल हो जाएगी, लेकिन ये बहुत समझने की चीज है, जो अगर आप सब्जेक्ट के बेसिक को पकड़ लेते हैं तो ये बात समझ में आ जाती है। तो इसका मतलब है कि ये तीसरा नहीं है, और अगर ये तीसरा नहीं है और पहला दूसरा दोनों है तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, फिर आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं पकड़ पाते हैं तो आप जा सकते हैं कि केवल तीन तो गलत ही है, स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है। फिर दिया हुआ केवल दो और तीन, आप देख रहे हैं कि इस तीसरे विकल्प में भी तीसरा दिया हुआ है, तो ये तीसरा भी, ये भी नहीं हो सकता है, और जो लास्ट विकल्प है उसमें भी तीसरा दिया हुआ है, एक दो तीन। जबकि अब आप सोच करके देखिए, बहुत सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको सॉल्व करने के तरीके को, कि अगर आप समझ लेते हैं इसको पढ़ने के दौरान ही, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे वैसे ही आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, गलत है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो कोई भी ऐसा कूट सही नहीं हो सकता जिसमें तीन मौजूद हो, खत्म हो गई बात। अब आप देखेंगे कि बी सी डी इन तीनों कूट में तीन मौजूद है, केवल तीन, केवल दो और तीन, एक दो और तीन, तो बट नेचुरल है कि बी और सी, बी सी डी नहीं हो सकते। अब अगर आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि यार एक है कि नहीं है, दो है कि नहीं है, तो आपके पास ए बचता है, ए में निशान लगा दीजिए, आप 100% सही हो गए। फ्रेंड्स, ये है शब्दों के माया जाल से उबरने की बात, और इसी ये है अलग तरीके से सब्जेक्ट के बेसिक को समझ लेने का कमाल। तो मित्रों, अब मैं आगे चर्चा करूंगा, प्रीलिम्स की हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करते रहेंगे। अब मैं आता हूं आज के मेल पर। कविता जी, आपने, मैं आपको बता चुका हूं इंग्लिश के न्यूज़पेपर के बारे में आपने पूछा था, कविता शर्मा ने। तो फ्रेंड्स, आज के मेल में भी बहुत लोगों ने ऑडियो गाइडेंस के प्रोग्राम को सराहा है, लोगों ने बहुत अच्छी भावनाएं व्यक्त की हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत से इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सफलता आपकी है, आप जब इसको फैलाएंगे तो ये चीज फैलेगी, और अगर आपको सच में लगता है कि ये आपके काम की है, तो मैं समझता हूं कि धर्म और कर्तव्य बनता है कि दूसरों को भी बताएं कि वो इससे फायदा उठाएं, इससे आपको ही ईश्वर मदद करेगा। इस पर मेरा बहुत ही ठोस विश्वास है, और मुझे खुशी है कि मेरे लिसनर्स, मेरे श्रोता अपने इस दायित्व को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, इसीलिए लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसको पसंद करने वालों में जिन्होंने मुझे लिखा है, मेल लिखा है, विनोद गिरवाल है मऊ इंदौर से, दीपक कुमार है अलीगढ़ से, इसके बाद है, ये आप शायद क्लास में भी आ रहे हैं दीपक जी, बिल्कुल आपका स्वागत है आप, और मैं ये आपको खासकर हिदायत दूंगा कि आप ऑडियो गाइडेंस जरूर सुनते रहें। इस भ्रम में मत रहिएगा कि चूंकि आप क्लास अटेंड करने जा रहे हैं तो आपको ऑडियो गाइडेंस सुनने की जरूरत नहीं है, ये विकल्प नहीं है। ऑडियो गाइडेंस का विकल्प क्लास नहीं है, और क्लास का विकल्प ऑडियो गाइडेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करने वाले हैं। तो दीपक कुमार हैं अलीगढ़ से, ओमराज मीना हैं जयपुर से। ओमराज जी, बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा छोटा मेल लिखें, और खासकर जब देवनागिरी को रोमन में लिखा जाता है तो बहुत मुश्किल होता है, सुबह मेरे पास एटलीस्ट समय की बेहद कमी होती है, तो प्लीज छोटा मेल लिखें। प्रतिभा जी के बारे में मैं बात कर चुका हूं, आप ये है गांधी हैं हजारीबाग से, अमर सिंह हैं उर्वशी वैष्णव हैं इंदौर से, शोभित चतुर्वेदी हैं बंगलुरु से, मजहर अहमद खान हैं झांसी से, इनका बीच बीच में फोन भी आता रहता है। तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग अब न केवल ऑडियो गाइडेंस को पसंद ही कर रहे हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अतुल शर्मा हैं भिवानी से, जो लगातार लिखते रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि प्री में जो स्कोर हुआ है उसको देख करके मैं स्टंट आश्चर्यचकित रह गया हूं, शॉक्ड हूं। अतुल जी, इसके बारे में हम लोग संडे को मैं बता चुका हूं कि संडे के दिन हम लोग जो कट ऑफ मार्क्स आए हैं उसको लेकर के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो आपको संडे को इसकी सारी सच्चाइयां पता लगेंगी। इसके बाद कौशल है मैनपुरी से, मैं कहूंगा कि आपको कम से कम देखिए 3 न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, इसमें चाहे फिर जितना भी समय लगे, एक नेशनल न्यूज़पेपर, चाहे आप हिंदी इंग्लिश का पढ़ें, एक आप अपने स्टेट का न्यूज़पेपर, और एक पेपर इकोनॉमिक से रिलेटेड, ये 3 न्यूज़पेपर कम से कम पढ़ने ही चाहिए। इसके बाद है सागर है सतारा से, इन्होंने गवर्नमेंट के जो वेबसाइट होती है उसकी कोई जानकारी मांगी है। सागर जी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पर चले जाएं, जितने भी हमारे मिनिस्ट्रीज हैं उन पर चले जाएं, तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, और मैं कोशिश करता हूं कि आपके मेल के एड्रेस पर मैं कुछ कर सकूं। अंजलि ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने इस तरह की लिस्ट भेजी है जो सरकारी वेबसाइट की लिस्ट है। अंजलि जी, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अपनी तरफ से ये अच्छा कदम उठाया और मेरे पास लिस्ट भेजी है। मैं अब ये जो पूरा का पूरा जो लिस्ट है अपनी तरफ से मैं सागर को, सतारा के सागर को, मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच अंजलि, सो नाइस ऑफ यू। मनीषा मिश्राम है, मनीषा जी आपने पूछा है क्लास में आने के लिए, देखिए सबसे अच्छा पीरियड आपके पास अभी क्लास में आने के लिए है, वो क्यों? क्योंकि अभी आप तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, और मैं यही बताने जा रहा हूं कि आपको तैयारी की शुरुआत करनी कैसे चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत लोग जो दो दो तीन तीन साल से तैयारी कर रहे हैं वो जानते ही नहीं कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, बस तैयारी करने लग गए हैं। तो आपके लिए तो सबसे आदर्शतम स्थिति, सबसे सही समय यही है कि आप को पता लग जाए कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए, चलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, चलना कैसे है और किस दिशा में है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तो समझता हूं आप यदि अन्यथा न लें तो डेफिनेटली आपके लिए सबसे आदर्शतम और सही समय है कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। भरत कुमार हैं, इन्होंने पूछा है कि भिवानी से हैं ये, कि मैं स्टूडेंट का नाम बता दूं जिसने भिवानी से रजिस्ट्रेशन कराया है और नंबर दे दूं। भरत जी देखिए, मैंने कल कहा था कि जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं जब तक वो अपनी अनुमति नहीं देंगे उनका नाम और उनका नंबर ईमेल एड्रेसेस डिस्क्लोज करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। मैं इतना ही कह सकता हूं कि भिवानी से रजिस्ट्रेशन है और आप अगर चाहें तो करा सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं भरत जी कि आपको किसी की उस जरूरत क्यों है? आप किसी के फॉलोवर क्यों बनना चाहते हैं? आप लीडर क्यों नहीं बनते? आप रजिस्ट्रेशन कराइए और दूसरे लोग आपको फॉलो करें। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसी ने कराया है या नहीं है, आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने कराया है नहीं कराया, और यदि जरूरत नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने कराया नहीं कराया। आने दीजिए, पूरे भिवानी को आ जाने दीजिए क्लास में, आपके लिए जरूरत नहीं है आप बिल्कुल मत आइए। लेकिन अगर कोई भी नहीं आ रहा है, आपकी जरूरत है, तो आपको उस एंगल में सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूं कि हमारे डिसीजन का आधार क्या होना चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विकास कुमार एक कौसाम्बी से, इन्होंने पूछा है कि सीसेट के टेस्ट पेपर और गाइडेंस चाहिए। विकास जी, बहुत से वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, बाजार में भी ये सारी चीजें मिलती हैं, आप वहां से देखें, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं अब आज के अपने ऑडियो गाइडेंस को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जो भी क्लिपिंग्स डाली गई हैं उन्हें बहुत ध्यान से देखेंगे, समझें और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।